एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी का इस अंक में आप सबका स्वागत है।
और आज हम इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे जा रहे हैं, एक ऐसे दौर की गहराई में उतरेंगे जिसने पश्चिमी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं रिफॉर्मेशन की, यानी धर्म सुधार आंदोलन की।
हाँ, वो दौर जब सदियों से चले आ रहे ईसाई धर्म के तौर तरीकों, उसकी मान्यताओं पर आप कह सकते हैं बड़े गंभीर सवाल उठने लगे थे।
बिल्कुल, और ये सवाल सिर्फ किताबों या चर्च की दीवारों तक सीमित नहीं रहे। इन्होंने तो राजनीति, समाज, संस्कृति, यहाँ तक कि आम लोगों की रोज की जिंदगी को भी मतलब पूरी तरह से हिला दिया था।
सही कहा। और इस सफर में, इस उथल पुथल को समझने में हमारे गाइड होंगे एक बहुत ही माने हुए इतिहासकार पीटर मार्शल, और उनकी किताबें, खासतौर पर द रिफॉर्मेशन, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
हाँ, और मार्शल की बात मुझे इसलिए दिलचस्प लगती है क्योंकि वो हमें वो घिसी पिटी कहानी नहीं सुनाते कि एक हीरो आया मार्टिन लूथर और उसने सब बदल दिया।
नहीं, वो दिखाते हैं कि ये मामला कहीं ज्यादा पेचीदा था, कई परतें थी इसमें, और ये प्रक्रिया काफी लंबी चली।
और ये आज समझना क्यों जरूरी है? मेरे ख्याल से इसलिए कि ये हमें सिखाता है कि बड़े ऐतिहासिक बदलाव असल में होते कैसे हैं, कितने कितने अनप्रेडिक्टेड होते हैं उनके नतीजे।
बिल्कुल, कैसे कभी कभी सुधार की सबसे अच्छी नीयत वाली कोशिशें भी गहरे बंटवारे पैदा कर देती हैं, और कैसे धर्म और सत्ता, मतलब राजनीति, ये हमेशा से एक दूसरे में उलझे रहे हैं।
तो चलिए पीटर मार्शल के नज़रिए से इस बेहद दिलचस्प और उथल पुथल वाले दौर को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा इनके बारे में जान लें। ये पीटर मार्शल हैं कौन, जिनकी नज़रों से हम ये सब देखने वाले हैं?
हाँ बिल्कुल, पीटर मार्शल जो हैं वो ब्रिटेन के शुरुआती आधुनिक यूरोप और धार्मिक इतिहास के, आप कह सकते हैं, टॉप इतिहासकारों में से एक हैं। आजकल वो वॉरविक यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं।
अच्छा,
और उनका अकादमिक रिकॉर्ड भी बहुत ज़बरदस्त है। कैम्ब्रिज से पीएचडी हैं, ऑक्सफोर्ड के बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑल सोल्स कॉलेज में फेलो भी रहे हैं। मतलब अकादमिक दुनिया में उनका नाम काफ़ी वज़न रखता है।
और उनकी रिसर्च सिर्फ रिफॉर्मेशन तक ही सीमित है या और भी कुछ?
नहीं नहीं काफ़ी फैला हुआ उनका काम, मध्ययुगीन धर्म से लेकर इंग्लैंड में जो रिफॉर्मेशन हुआ, फिर कैथोलिक चर्च ने जो प्रतिक्रिया दी जिसे काउंटर रिफॉर्मेशन कहते हैं, इन सब पर उनकी गहरी पकड़ है। कई किताबें लिखी हैं उन्होंने।
हाँ, मैंने सुना है उनकी हेरिटिक्स एंड बिलीवर्स, अ हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश रिफॉर्मेशन काफ़ी चर्चित रही है।
बिल्कुल, लेकिन जो बात उन्हें खास बनाती है ना, वो ये है कि वो सिर्फ ऊपर ऊपर की कहानी, मतलब राजा रानी या पोप के किस्सों में नहीं खोते।
अच्छा, तो फिर किस चीज पर जोर लेते हो?
वो सामाजिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, लोगों की सोच कैसे बदल रही थी, इन सबको जोड़कर देखते हैं। वो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि इतिहास जो हमें सीधा साधा दिखता है ना, वो असल में होता नहीं है।
सही बात है, असल में तो चीजें काफी उलझी हुई होती हैं।
एग्जैक्टली, मार्शल यही दिखाते हैं कि बदलाव असल में कितना जटिल, कितना विवादों से भरा, और कभी कभी तो विरोधाभासी भी होता है, और वो आम लोगों के अनुभव को भी काफी तवज्जो देते हैं।
कि मतलब इन बड़े बड़े धार्मिक और राजनीतिक तूफानों का उनकी जिंदगी पर, उनकी आस्था पर क्या असर पड़ रहा था, उनके डर, उनकी उम्मीदें, ये सब।
हाँ, और एक और जरूरी बात, वो रिफॉर्मेशन को ऐसे नहीं देखते कि भाई प्रोटेस्टेंटिज्म की जीत तो होनी ही थी और कैथोलिसिज्म को हारना ही था। वो इसे इतिहास के कई मुमकिन रास्तों में से एक मानते हैं जो उस वक्त खुला।
मतलब एक बैलेंस नजरिया रखते हैं।
हाँ बिल्कुल, वो किसी एक पक्ष का गुणगान नहीं करते। दोनों तरफ की जटिलताओं को, अंदरूनी सुधारों को, उनके संघर्षों को समझने की कोशिश करते हैं। और यही बात उन्हें इस विषय पर एक बहुत जरूरी आवाज बनाती है।
तो अब आते हैं उनकी किताबों पर। क्या कहना चाहती हैं ये किताबें रिफॉर्मेशन के बारे में, क्या है इनका सार?
देखिए, उनकी किताबें ना रिफॉर्मेशन का एक बहुत ही वाइड एंगल व्यू देती हैं। अगर कोई टॉपिक से बिल्कुल नया है तो उसके लिए ये एक शानदार शुरुआत है,
और जो पहले से जानते हैं उनके लिए,
उनके लिए भी इसमें बहुत कुछ है। मार्शल के विश्लेषण में एक नयापन है, एक ताजगी है। उनका मेन मकसद ये समझाना है कि भाई 15वीं सदी के एंड से लेकर 17वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में ईसाई धर्म कैसे बदला, और उस बदलाव का असर आज तक कैसे दिखता है।
और उनका जो जो सेंट्रल पॉइंट है ना, वो बार बार यही निकल के आता है कि भाई रिफॉर्मेशन कोई एक एक सिंगल इवेंट नहीं था कि बस 1517 में लूथर ने वो 95 थीसिस लगा दिए और हो गया।
हाँ नहीं, वो कहते हैं कि ये एक लंबी, मतलब काफी कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड आप कह सकते हैं एक प्रोसेस थी। ये सिर्फ धर्म या थियोलॉजी तक सीमित नहीं थी।
सिर्फ धर्म के बारे में नहीं थी मतलब?
बिल्कुल नहीं, सिर्फ थियोलॉजी की बात नहीं थी। इसने यूरोप के समाज को, उसकी राजनीति को, उसकी संस्कृति को, यहाँ तक कि लोगों के सोचने के तरीके को, उनकी इंडिविजुअल चेतनाओं को भी बहुत गहरे तक बदल दिया।
एक तरह की धीमी लेकिन जबरदस्त सांस्कृतिक क्रांति कह सकते हैं?
हाँ, कुछ वैसा ही। और मार्शल एक और बड़ी धारणा को चैलेंज करते हैं जो अक्सर मान लिया जाता है कि भाई मध्ययुगीन कैथोलिक चर्च तो एकदम करप्ट हो चुका था और प्रोटेस्टेंट सुधार जरूरी था। बिल्कुल सही था, अंधेरे के बाद उजाले जैसा।
हाँ, ये कहानी तो सुनी है।
मार्शल कहते हैं रुको, इतनी सीधी बात नहीं है। सुधार से पहले का जो चर्च था उसमें गहरी आस्था भी थी, लोगों का जुड़ाव भी था, वो समाज का केंद्र था। हाँ, उसमें समस्याएं भी थीं, करप्शन भी था, ये भी सच है।
तो मतलब अच्छाई बुलाई दोनों थी।
बिल्कुल, वो दिखाते हैं कि सुधार की जरूरत तो महसूस हो रही थी लेकिन उसका रूप क्या होगा ये किसी को पता नहीं था। बल्कि सुधार के कई सारे बीच तो उसी मध्ययुगीन चर्च की जमीन में ही थे।
अच्छा, तो किताब हमें कहां से कहां तक ले जाती है?
वो उस दौर के माहौल से शुरू करते हैं, फिर लूथर की क्रांति तक आते हैं, फिर दिखाते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग सुधार आंदोलन खड़े हुए,
जैसे वो रेडिकल सुधारक वगैरह।
हाँ, रेडिकल थे। फिर कैल्विन का जिनेवा आया, और राजनीति, राजनीति ने कैसे सब कुछ तय किया, फिर कैथोलिक चर्च ने कैसे जवाब दिया, कैसे खुद को बदला, और आखिर में इस पूरे उथल पुथल की लेगेसी क्या रही, जो कि काफी मिली जुली है।
और ये सिर्फ बड़े लोगों की कहानी नहीं है।
नहीं, यही तो खास बात है, ये आम लोगों के विश्वास, उनके शक, उनकी जिंदगी में जो बदलाव आए उसकी भी कहानी है। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। जैसे मार्शल अपनी किताबों में एक एक परत खोलते हैं ना, वो शुरू करते हैं उस दुनिया से जिसमें ये सब हुआ, जिसे वो कहते हैं वो दुनिया जो हो गई।
बुराइयों का अड्डा नहीं था, आम लोगों के लिए धर्म उनकी जिंदगी का सेंटर पॉइंट था। उन्हें अपने सैल्वेशन की, मरने के बाद क्या होगा, इसकी बहुत गहरी चिंता थी।
और चर्च उन्हें रास्ते बताता था।
बिल्कुल, संतों की पूजा करो, तीर्थ यात्रा पर जाओ, चैरिटी करो, चर्च की जो सैक्रमेंट्स हैं उनमें हिस्सा लो। इन सब से उन्हें एक तरह का भरोसा मिलता था कि हाँ, वो ईश्वर की कृपा पा सकते हैं, नर्क से बच सकते हैं। ये एक पूरी व्यवस्था थी जो लोगों की जिंदगी को मीनिंग देती थी। लेकिन फिर समस्याएं कहाँ थी?
समस्याएं भी थी। कुछ पादरी थे जिनका बर्ताव ठीक नहीं था, वो पैसा बनाने में लगे रहते थे, या उनका नैतिक जीवन सवालों के घेरे में था, इसकी आलोचना होती थी। फिर धर्म के जो गूढ़ मसले थे, थियोलॉजी, उस पर काफी कन्फ्यूजन था, अलग अलग राय थी,
और आम लोगों के विश्वास और चर्च की शिक्षा में भी फर्क था।
हाँ, काफी फर्क था। चर्च की जो ऑफिशियल टीचिंग थी और आम लोग जो मानते थे, जिसमें कई बार अंधविश्वास भी मिल जाते थे, उसमें एक गैप था।
और इसी माहौल में वो इरास्मस जैसे लोग भी थे, ह्यूमनिस्ट विचारक।
बिल्कुल, ये लोग चर्च के अंदर ही सुधार चाहते थे। वो कह रहे थे कि भाई हमें ओरिजिनल टेक्स्ट यानी बाइबल की तरफ लौटना चाहिए, कर्म कांडों से ज्यादा नैतिकता पर जोर देना चाहिए। तो एक तरह से आप कह सकती हैं माहौल तैयार हो रहा था, कुछ बदलने वाला था।
लेकिन क्या बदलेगा, कितना बदलेगा, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था।
एग्जैक्टली, किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। और फिर स्टेज पर आते हैं मार्टिन लूथर। मार्शल उनके जो पर्सनल स्ट्रगल थे ना, उसे बड़ी गहराई से दिखाते हैं। लूथर खुद एक मॉन्क थे और वो अपने पापों के बोझ तले दबे हुए थे। उन्हें लगता था कि ईश्वर बहुत न्यायी हैं और वो उसके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे।
हाँ, वो बहुत परेशान रहते थे। उन्हें लगता था कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी अच्छे काम कर ले, वो ईश्वर को खुश नहीं कर सकते। ये एक बहुत गहरा मानसिक और आध्यात्मिक संकट था उनके लिए।
और फिर बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने, सोचने विचारने के बाद वो उस एक नतीजे पर पहुंचे जिसने सब कुछ बदल दिया। वो आइडिया था सोला फाइडे।
सोला फाइडे,
हाँ, यानी केवल विश्वास द्वारा मुक्ति।
हाँ, कि मुक्ति या सैल्वेशन जो है वो ईश्वर का एक फ्री गिफ्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में विश्वास रखने से मिलता है। आप उसे अपने अच्छे कामों से, दान पुण्य से, या चर्च के बताए रास्तों से कमाया खरीद नहीं सकते।
ये तो उस समय के चर्च की पूरी व्यवस्था पर ही सवाल था, क्योंकि चर्च तो यही कहता था कि कर्म करो, दान दो, तभी मुक्ति मिलेगी।
बिल्कुल, ये एक क्रांतिकारी विचार था। और जब 1517 में उन्होंने इंडल्जेंस के खिलाफ अपने वो 95 थीसिस या पॉइंट्स लिख के पब्लिक किए,
वो पाप मोचन पत्र, जिन्हें खरीद कर लोग समझते थे कि पाप माफ हो जाएंगे। हाँ, वही तो, जब उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो ये जो उनका निजी धार्मिक अनुभव था वो एक पब्लिक चैलेंज बन गया।
और फिर प्रिंटिंग प्रेस ने आग में घी का काम किया।
ओह, जबरदस्त, वो जमाने का समझ लीजिए वायरल मीडिया था। लूथर के विचार, उनके पर्चे इतनी तेजी से फैले कि किसी ने सोचा भी नहीं था। पूरे जर्मनी में, फिर यूरोप में
पोप के साथ टकराव तो होना ही था।
बिल्कुल, टकराव बड़ा, उन्हें धर्म से निकाल दिया गया। फिर 1521 में वो वर्म्स की सभा हुई, जहां सम्राट के सामने उन्होंने साफ कह दिया कि मैं अपने विचारों से पीछे नहीं हट सकता। ये वो मोमेंट था जिसने एक चिंगारी को आग बना दिया।
और शायद लूथर ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि इसके नतीजे इतने दूर तक जाएंगे।
शायद नहीं, इतिहास अक्सर ऐसे ही मोड़ लेता है। और यहीं पर मार्शल का वो मेन पॉइंट फिर से आता है कि रिफॉर्मेशन कोई एक मोनोलिथिक मूवमेंट नहीं था। जैसे ही लूथर के विचार फैले ना, यूरोप के अलग अलग कोनों में अलग अलग तरह के सुधारक सामने आने लगे,
जिनके विचार लूथर से मिलते भी थे और अलग भी।
हाँ बिल्कुल, जैसे ज्यूरिख शहर में एक और सुधारक थे, हल्डरिच ज्विंगली। वो कई बातों में लूथर से सहमत थे, लेकिन कुछ बहुत जरूरी मुद्दों पर, जैसे यूकेरिस्ट यानी प्रभु भोज की रस्म का क्या मतलब है, इस पर उनके बीच गहरा मतभेद था।
वो मिले भी थे शायद आपस में।
हाँ, 1529 में मार्बर्ग में मिले थे। कोशिश हुई कि सुलह हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई, और यहीं से प्रोटेस्टेंट आंदोलन शुरू में ही बट गया।
और फिर वो रेडिकल रिफॉर्मर्स भी थे।
हाँ, एनाबैप्टिस्ट जैसे समूह। ये लोग मानते थे कि लूथर और ज्विंगली जैसे जो मेन स्ट्रीम सुधारक हैं, वो तो बस आधा अधूरा काम कर रहे हैं।
वो और आगे जाना चाहते थे,
बहुत आगे। वो कहते थे कि बपतिस्मा बच्चों का नहीं होना चाहिए, बल्कि वयस्कों का, जब वो खुद विश्वास को समझें। और वो चर्च और स्टेट को पूरी तरह अलग देखना चाहते थे।
इनमें कुछ शांतिवादी थी और कुछ हिंसक भी।
हाँ, दोनों तरह के थे। मुंस्टर शहर में जो विद्रोह हुआ वो काफी हिंसक था। इन रेडिकल्स को न सिर्फ कैथोलिकों ने, बल्कि लूथर और ज्विंगली के फॉलोअर्स ने भी खतरनाक माना और उनका जबरदस्त दमन किया।
और फिर एक और बड़ा नाम आता है, जॉन कैल्विन।
हाँ, जॉन कैल्विन। वो फ्रेंच थे, लेकिन उन्होंने जिनेवा शहर को प्रोटेस्टेंटिज्म का एक तरह से गढ़ बना दिया। उन्होंने प्रोटेस्टेंट थियोलॉजी को एक बहुत ही सिस्टमैटिक, लॉजिकल और डिसिप्लिन्ड रूप दिया। उनकी किताब इंस्टीट्यूट्स ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन तो माइलस्टोन मानी जाती है।
और उनके विचार क्या थे, कुछ खास?
उन्होंने ईश्वर की सॉवरेनिटी, परम सत्ता पर, और प्रीडेस्टिनेशन यानी पूर्व नियति के सिद्धांत पर बहुत जोर दिया।
कि ईश्वर ने पहले से ही तय कर रखा है कि कौन स्वर्ग जाएगा कौन नहीं। ये तो काफी कठोर लगता है सुनने में।
हाँ लगता है, लेकिन इसने कैल्विनिज्म को एक बहुत डायनामिक और इंटरनेशनल फोर्स बना दिया। स्कॉटलैंड, नीदरलैंड्स, फ्रांस, ईस्टर्न यूरोप, कई जगह ये फैला। तो कहने का मतलब ये कि 16वीं सदी में प्रोटेस्टेंट होने का कोई एक मतलब नहीं था, कई मतलब थे।
अब यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात आती है, जिसे मार्शल बार बार अंडरलाइन करते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ धर्म के नए आइडियाज या थियोलॉजी ने ही रिफॉर्मेशन का रास्ता तय नहीं किया, असल खिलाड़ी तो राजनीति थी।
राजनीति कैसे?
मतलब ये कि प्रोटेस्टेंट विचार वहीं फैले और टिके जहां उन्हें लोकल रूलर्स का, प्रिंसेस का, राजाओं का सपोर्ट मिला।
अच्छा, तो जर्मन राजकुमारों ने लूथर का साथ क्यों दिया? सिर्फ इसलिए कि वो लूथर के विचारों से सहमत थे?
कुछ जरूर होंगे जो धार्मिक रूप से कन्विंस्ड थे, लेकिन कईयों के लिए ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मौका था।
कैसा मौका? एक तो पवित्र रोमन सम्राट जो कैथोलिक था, उसके कंट्रोल से आजादी पाने का। दूसरा, चर्च की जो जबरदस्त जमीन जायदाद थी, उस पर कब्जा करने का। तो धर्म के साथ साथ सत्ता और पैसे का खेल भी चल रहा था।
इंग्लैंड का रिफॉर्मेशन तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शायद।
बिल्कुल, क्लासिक केस है। वहां सुधार की शुरुआत किसी गहरी धार्मिक बहस से नहीं हुई, वो तो राजा हेनरी 8 की पर्सनल जरूरत से शुरू हुई।
उन्हें बेटा चाहिए था और पोप तलाक की इजाजत नहीं दे रहा था।
एग्जैक्टली, रानी कैथरीन ऑफ एरागॉन से बेटा नहीं हो रहा था, उन्हें एन गुलिन से शादी करनी थी, एक वारिस चाहिए था। पोप ने मना किया, तो हेनरी ने कहा ठीक है, पोप को ही हटा दो,
और इंग्लैंड के चर्च को रोम से अलग कर दिया।
हाँ, खुद को चर्च का सुप्रीम हेड बना लिया। शुरू में तो इंग्लैंड का चर्च ज्यादातर कैथोलिक ही रहा, बस पोप नहीं था। बाद में धीरे धीरे उनके बच्चों के जमाने में वो ज्यादा प्रोटेस्टेंट बना।
ये तो साफ दिखाता है कि धर्म और राजनीति कितने जुड़े हुए थे।
बिल्कुल, आप उस दौर में इन दोनों को अलग करके देख ही नहीं सकते, वो एक ही सिक्के के दो पहलू थे।
अच्छा, तो प्रोटेस्टेंट खेमे में तो इतनी हलचल थी, लेकिन दूसरी तरफ कैथोलिक चर्च क्या कर रहा था? वो बस हाथ पर हाथ धरे बैठा था?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही मार्शल एक और जरूरी बात कहते हैं, वो इसे सिर्फ काउंटर रिफॉर्मेशन नहीं कहते।
मतलब सिर्फ एक रिएक्शन?
तो क्या कहते हैं?
वो इसे कैथोलिक रिफॉर्मेशन भी कहते हैं, यानी कैथोलिक चर्च के अंदर भी सुधार की एक अपनी लहर चल रही थी। हाँ, ये सच है कि लूथर से पहले भी कुछ कोशिशें थीं, लेकिन प्रोटेस्टेंट चुनौती ने उस प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया।
अच्छा,
तो क्या किया कैथोलिक चर्च ने, क्या कदम उठाए?
सबसे बड़ा और सबसे अहम कदम था ट्रेंट की काउंसिल, काउंसिल ऑफ ट्रेंट। ये 1545 से 1563 तक बीच बीच में रुककर चलती रही। ये कैथोलिक सुधार का एक तरह से मैनिफेस्टो था।
इसमें क्या तय हुआ?
इसमें कैथोलिक सिद्धांतों को बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया। जैसे 7 संस्कार होते हैं, मुक्ति के लिए सिर्फ विश्वास काफी नहीं, अच्छे कर्म भी जरूरी हैं, पोप का अधिकार सर्वोच्च है, वगैरह वगैरह। प्रोटेस्टेंट विचारों को सिरे से खारिज कर दिया गया।
मतलब थियोलॉजी क्लियर कर दी और प्रैक्टिकल लेवल पर?
हाँ, प्रैक्टिकल सुधारों पर भी जोर था। चर्च के अंदर डिसिप्लिन को कड़ा किया गया। बिशप लोगों को कहा गया कि भाई अपने इलाके में रहो और काम करो। पादरियों की ट्रेनिंग के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई और नैतिक आचरण को सुधारने के लिए सेमिनारीज बनाने की बात हुई। कोशिश थी कि चर्च को अंदर से मजबूत किया जाए।
और वो जेसुइट्स का जिक्र भी आता है ना?
हाँ बिल्कुल। इसी दौर में कई नए धार्मिक ऑर्डर्स बने, जिनमें सबसे ज्यादा असरदार साबित हुए सोसाइटी ऑफ जीसस यानी जेसुइट्स। इग्निशियस लॉयोला ने इनकी स्थापना की थी।
वो किस लिए जाने जाते थे?
अपने अनुशासन के लिए, अपनी जबरदस्त पढ़ाई लिखाई के लिए, पोप के प्रति उनकी जो लॉयल्टी थी और दुनिया भर में उनके जो मिशनरी काम थे।
तो उन्होंने कैथोलिक धर्म को दोबारा फैलाने में मदद की?
बहुत ज्यादा। उन्होंने यूरोप में कई इलाकों को वापस कैथोलिक बनाया या प्रोटेस्टेंट बनने से रोका, और साथ ही एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, सब जगह कैथोलिक धर्म का झंडा लेकर पहुंचे। तो मार्शल ये कहते हैं कि कैथोलिक चर्च इस चैलेंज से टूटा नहीं, बल्कि एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा ग्लोबल ताकत बनकर उभरा।
ये सब तो बड़ी बड़ी बातें हो गईं, थियोलॉजी, राजनीति, काउंसिल, लेकिन आम आदमी, आम औरत, उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा था इन सब का?
हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है, और असर बहुत गहरा पड़ रहा था, खासकर उन इलाकों में जो प्रोटेस्टेंट बन गए थे। वहां तो रोजमर्रा की जिंदगी ही बदल गई।
कैसे, क्या बदला?
सोचिए, चर्च जो सदियों से जैसा दिखता आया था वो बदल गया। अंदर से मूर्तियां हटा दी गई, पेंटिंग्स हटा दी गई, रंगीन कांच की खिड़कियां तोड़ दी गई, सब कुछ एकदम सादा, सिंपल।
पूजा का तरीका भी बदला होगा।
बिल्कुल। अब संतों की पूजा नहीं होती थी, उनकी निशानियां, रेलिक्स हटा दिए गए, तीर्थयात्राएं बंद, मठ कॉन्वेंट बंद कर दिए गए, हजारों मॉन्क्स और नंस सड़क पर आ गए। लैटिन में जो मिस्टीरियस मास होता था, उसकी जगह अब लोकल लैंग्वेज में बाइबल पढ़ी जाने लगी। लंबे लंबे उपदेश होने लगे। जोर अब कान पर था, सुनने और समझने पर।
और परिवार, पारिवारिक जीवन पर क्या असर हुआ?
वो भी बदला। प्रोटेस्टेंटों ने पादरियों के लिए शादी न करने का नियम यानी सेलिबेसी खत्म कर दिया। लूथर ने खुद शादी की एक पूर्व नन से, तो अब शादीशुदा पादरी और उसका परिवार समाज का नॉर्मल हिस्सा बन गया। फैमिली लाइफ को ही धार्मिक जीवन का सेंटर माना जाने लगा।
सुनने में तो ये सब काफी लिबरेटिंग लगता है। पुरानी बंदिशें टूट रही थी।
हाँ, एक हद तक तो ये सही है, लेकिन जैसा मार्शल बताते हैं, सिक्के का दूसरा पहलू भी था। वो इसे सोशल डिसिप्लिन का दौर कहते हैं।
सोशल डिसिप्लिन मतलब?
मतलब ये कि चाहे प्रोटेस्टेंट अथॉरिटीज हों या कैथोलिक, दोनों ने ही, चर्च और सरकार दोनों ने मिलकर आम लोगों के मॉरल बिहेवियर पर पहले से ज्यादा सख्ती करनी शुरू कर दी।
अच्छा, किस तरह की सख्ती?
जैसे शराब पीकर हुड़दंग करना, जुआ खेलना, ज्यादा नाचना गाना, संडे को काम करना, इन सब चीजों पर नजर रखी जाने लगी, सजाएं दी जाने लगी, लोगों की पर्सनल लाइफ में दखल बढ़ा। और इसी दौर में वो विच हंट्स यानी जादू टोने के खिलाफ अभियान भी बहुत तेज हो गए।
ओ हाँ, वो तो बहुत ही भयानक था।
हजारों लोगों को, जिनमें ज्यादातर औरतें थीं, डाइन बताकर जिंदा जला दिया गया या मार डाला गया। ये रिफॉर्मेशन का एक बहुत ही डार्क साइड है।
ये तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, एक तरफ व्यक्तिगत आस्था की बात, दूसरी तरफ समाज पर इतना कसता हुआ शिकंजा।
बिल्कुल। लेकिन एक पॉजिटिव चीज भी हुई, क्योंकि प्रोटेस्टेंटिज्म में बाइबल पढ़ने पर जोर था, तो लिटरेसी बढ़ी, लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया गया, स्कूल खुले, खासकर प्रोटेस्टेंट देशों में,
तो शिक्षा का प्रसार हुआ।
हाँ, ये एक आम नतीजा था।
तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें, तो रिफॉर्मेशन की विरासत क्या है? मतलब पीटर मार्शल के मुताबिक दुनिया को इससे क्या मिला?
मार्शल कहते हैं कि विरासत बहुत ही मिक्स्ड है, कॉम्प्लेक्स है और विरोधाभासी भी। पहली बात तो साफ है, एक आंदोलन जो ईसाई धर्म को एकजुट करने चला था, उसी ने उसे हमेशा के लिए तोड़ दिया। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच एक दरार पड़ गई जो आज तक भरी नहीं है।
और इस बंटवारे के नतीजे सिर्फ धार्मिक तो नहीं रहे होंगे?
बिल्कुल नहीं। इस धार्मिक बंटवारे ने यूरोप को सदियों तक चलने वाले भयानक युद्धों में झोंक दिया। फ्रांस में धर्म युद्ध हुए, जर्मनी में वो 30 साल का युद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए। धर्म के नाम पर इतनी हिंसा हुई कि सोचकर ही रूह कांप जाती है।
ये तो बहुत ही नेगेटिव तस्वीर है, क्या कुछ पॉजिटिव भी था?
हाँ, कुछ पॉजिटिव चीजें भी हुईं, लेकिन वो डायरेक्ट नतीजा नहीं थी बल्कि इनडायरेक्ट थी, और शायद सुधारकों का इरादा भी नहीं था। जैसे इसने इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा दिया, ये सोच कि हर इंसान का ईश्वर से सीधा रिश्ता हो सकता है, बीच में चर्च की जरूरत नहीं।
और सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, क्या उसकी जड़ें भी यही हैं?
शायद हाँ, लेकिन बहुत इनडायरेक्टली। सुधारक खुद तो बड़े धार्मिक थे, वो कोई सेक्युलर समाज नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने चर्च की पॉलिटिकल पावर को कमजोर किया, स्टेट की पावर को बढ़ाया। इस तरह अनजाने में ही सही उन्होंने एक प्रोसेस शुरू किया जिसने आगे चलकर धर्म और राज्य के अलगाव का रास्ता खोला।
और सबसे बड़ी विडंबना क्या मानते हैं मार्शल?
उनके हिसाब से शायद सबसे बड़ी आयरनी ये है कि ये जो स्थायी धार्मिक विभाजन हुआ और उसके कारण जो भयानक युद्ध हुए, उसी ने आखिरकार यूरोपियन समाज को रिलीजियस टॉलरेंस यानी धार्मिक सहिष्णुता का कॉन्सेप्ट अपनाने पर मजबूर किया।
मतलब लड़ लड़ के थक गए तो सोचा कि चलो अब साथ रहना सीखे।
हाँ, कुछ ऐसा ही। लोगों को धीरे धीरे समझ आया कि भाई अलग अलग विश्वासों के साथ जीना सीखना होगा, क्योंकि एक दूसरे को मिटाने की कोशिश में तो सब मिट जाएंगे। ये टॉलरेंस किसी ऊंचे आदर्श से नहीं आई, ये थकावट और मजबूरी से पैदा हुई चीज थी।
तो अगर हम मार्शल के विश्लेषण के कुछ सबसे जरूरी संदेशों को, की टेकअवेज को लिस्ट करना चाहें तो वो क्या होंगे?
मेरे ख्याल से पहला और सबसे जरूरी, रिफॉर्मेशन कोई सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट कहानी नहीं है। ये एक बहुत लंबी, कॉम्प्लिकेटेड, मल्टी डायमेंशनल और अक्सर वायलेंट प्रोसेस थी। इसे गुड वर्सेज ईविल या प्रोग्रेस वर्सेज डार्कनेस के फ्रेम में फिट करना गलत है।
ठीक है, दूसरा?
दूसरा है अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज, अप्रत्याशित परिणाम। इतिहास अक्सर हमारे इरादों से आगे निकल जाता है। सुधारक चले थे यूनिटी लाने, नतीजा हुआ परमानेंट डिविजन। वो चाहते थे रिलीजियस सर्टेनिटी, नतीजा हुआ रिलीजियस प्लूरलिज्म और यहां तक कि स्केप्टिसिज्म के बीच।
तीसरा,
डाइवर्सिटी ऑफ रिफॉर्म। प्रोटेस्टेंटिज्म कोई एक चीज नहीं थी, लूथरन, कैल्विनिस्ट, ज्विंगलियन, एनाबैप्टिस्ट, इनमें आपस में गहरे मतभेद थे। कई बार तो वो एक दूसरे के लिए उतने ही इंटॉलरेंट थे जितने कैथोलिकों के लिए। तो प्रोटेस्टेंट शब्द का इस्तेमाल थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिए।
और पांचवा,
कैथोलिक चर्च की रेजिलियंस और वाइटैलिटी। वो सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो अंदर से खुद को सुधार भी रहा था। वो इस चैलेंज से कमजोर नहीं पड़ा बल्कि एक नई एनर्जी, नए कॉन्फिडेंस और ज्यादा ग्लोबल आउटलुक के साथ उभरा।
मार्शल के कुछ कोट्स या विचार वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि रिफॉर्मेशन यूरोप पर घटा नहीं बल्कि यूरोप ने इसे खुद पर घटाया। इसका क्या मतलब निकालें?
इसका मतलब ये है कि ये कोई बाहर से आई हुई चीज नहीं थी, ये यूरोप के अंदर के जो टेंशन्स थे, जो जरूरतें थीं, जो कंडीशंस थीं और लोगों ने जो चॉइसेस की, उनका नतीजा था। यूरोप ने ही इस बदलाव को मुमकिन बनाया एक तरह से।
एक और बात वो कहते हैं कि रिफॉर्मेशन को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि सुधारक क्या सुधारना चाहते थे। ये क्यों जरूरी है?
इसलिए कि हम अक्सर मध्ययुगीन चर्च को आज के चश्मे से देखते हैं और उसे बस करप्ट मान लेते हैं। मार्शल कहते हैं नहीं, पहले उस समय के लोगों की नज़र से देखो, उनकी चिंताएं क्या थीं, उनकी आस्था क्या थी, उन्हें चर्च में क्या अच्छा लगता था, क्या बुरा, तभी समझ आएगा कि सुधार की बात उठी क्यों और लूथर जैसे लोगों के आइडियाज़ क्यों अपील कर गए।
और वो आयरनी वाली बात तो है ही, शायद रिफॉर्मेशन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इसने धार्मिक एकता को बहाल करने की कोशिश करके धार्मिक विविधता हासिल की।
हाँ, अनपेक्षित परिणामों का परफेक्ट एग्जाम्पल। और ये भी कि शुरुआती आधुनिक यूरोप में राजनीति और धर्म अलग अलग क्षेत्र नहीं थे, वे एक ही वास्तविकता के अलग अलग पहलू थे। ये रिमाइंडर है कि हमें आज के सेक्युलर लेंस से उस दौर को नहीं देखना चाहिए, उनके लिए ये सब घुला मिला था।
और आखिर में एक और जो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगा, रिफॉर्मेशन ने मध्ययुग का अंत नहीं किया, इसने उजागर किया कि मध्ययुग में हमेशा से क्या मौजूद था। ये क्या कह रहे हैं?
वो कह रहे हैं कि रिफॉर्मेशन ने कोई एकदम नई चीज नहीं बना दी, बल्कि मध्ययुग के समाज और चर्च के अंदर जो तनाव थे, जो सवाल थे, जो संभावनाएं थी, जो पहले से दबी हुई थी, रिफॉर्मेशन ने उन्हें बस सतह पर ला दिया, उन्हें एक्सप्लोड होने का मौका दे दिया। बदलाव अचानक नहीं आया, उसके बीज पहले से मौजूद थे।
तो क्या हम 500 साल पहले यूरोप में हुए इस पूरे घटनाक्रम से आज की दुनिया के लिए भी कुछ सीख सकते हैं? कुछ रेलेवेंस है इसका?
मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा है। पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है वो है मीडिया की ताकत, टेक्नोलॉजी की ताकत। जैसे उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस ने आइडियाज को फैलाया, डिबेट को शेप किया, वैसे ही आज इंटरनेट और सोशल मीडिया कर रहे हैं।
हाँ, वो तो है।
विचारों को फैलाते भी हैं और
पोलराइज भी करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, हेट स्पीच को एम्प्लीफाई करते हैं। तो जैसे प्रिंटिंग प्रेस के अच्छे और बुरे दोनों असर हुए, वैसे ही आज की टेक्नोलॉजी के भी हैं। हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसका हम पर क्या असर हो रहा है।
ये तो बिल्कुल सही पॉइंट है। और दूसरा है आइडियोलॉजी और पावर का नेक्सस। मतलब कोई भी विचार, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, सिर्फ अपने मेरिट पर कामयाब नहीं होता। उसकी सक्सेस इस पर डिपेंड करती है कि वो उस समय की पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक इंटरेस्ट और सोशल ग्रीवांसेस के साथ कैसे अलाइन होता है।
हाँ, ये आज भी दिखता है।
बिल्कुल, ये हमें आज के पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट्स को समझने में मदद करता है, कैसे आइडियाज और पावर हमेशा एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं।
और वो टॉलरेंस वाला लेसन?
हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। रिफॉर्मेशन के बाद की जो तबाही थी, उसने यूरोप को सिखाया कि साथ रहने के लिए डिफरेंसेस को बर्दाश्त करना सीखना पड़ेगा। टॉलरेंस कोई आइडियल नहीं था जिससे शुरुआत हुई, वो एक जरूरत थी जो खून खराबे से पैदा हुई। यह हमें याद दिलाता है कि डाइवर्सिटी में साथ रहना कभी आसान नहीं होता, ये एक मुश्किल से सीखा गया सबक है।
और एक आखिरी बात,
वो ये कि इतिहास को एक सीधी लाइन में चलने वाली प्रोग्रेस की कहानी की तरह देखने से बचना चाहिए। मार्शल दिखाते हैं कि रिफॉर्मेशन से आजादी आई तो नए कंट्रोल भी आए, पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो नई पैदा हो गई। कोई भी बड़ा चेंज हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है, उसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी। हमें उसे उसकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी में देखना चाहिए, ना कि सिर्फ हीरो या विलन की कहानी बना देना चाहिए।
मेरे लिए तो इस पूरी बातचीत से जो सबसे स्ट्राइकिंग बात निकली वो ये है कि कैसे एक तरफ एक इंसान का इतना गहरा पर्सनल स्पिरिचुअल क्राइसिस जैसे लूथर का था, और दूसरी तरफ एक राजा की बिल्कुल सांसारिक पॉलिटिकल ज़रूरतें जैसे हेनरी VIII की तलाक की इच्छा, ये दोनों चीज़ें मिलकर इतिहास का पहिया घुमा सकती हैं।
हाँ, और अक्सर उन दिशाओं में घुमा सकती है जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती।
एग्जैक्टली, जो नतीजे निकलते हैं वो शुरू करने वालों की सोच से बिल्कुल अलग होते हैं।
और मेरे लिए जो बात सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि कैसे यूनिटी और प्योरिटी की सबसे ज़ोरदार मांग करने वाले मूवमेंट्स ही अक्सर सबसे गहरे और कड़वे विभाजन पैदा कर देते हैं। वो चाहते थे एक, मिला अनेक। ये शायद ह्यूमन कंडीशन की एक परमानेंट आयरनी है।
ये हमें किसी भी बड़े बदलाव, किसी भी बड़ी आइडियोलॉजी के जो ग्रैंड क्लेम्स होते हैं ना, उनके प्रति थोड़ा विनम्र, थोड़ा स्केप्टिकल बनाती है।
बिल्कुल।
और ये सवाल छोड़ जाती है कि क्या आज भी जब हम क्रांति, सुधार, ट्रांसफॉर्मेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वो चीज़ें अंदर से उतनी ही कॉम्प्लेक्स, अनिश्चित और अनएक्सपेक्टेड नतीजों से भरी नहीं होती जितना 500 साल पहले का रिफॉर्मेशन था?
शायद इतिहास हमें यही याद दिलाता है कि भविष्य हमारे काबू में उतना है नहीं जितना हम सोचते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।